नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डाइंग फॉर अ पेचेक, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के संगठनात्मक व्यवहार विशेषज्ञ जेफरी फेफर की शोधाधारित प्रबंधन पुस्तक है। इसका विषय केवल थकान या काम और निजी जीवन का संतुलन नहीं है, बल्कि यह प्रश्न है कि आधुनिक कार्यस्थल लोगों के शरीर, मन और आर्थिक सुरक्षा पर क्या प्रभाव डालते हैं। फेफर का मुख्य तर्क है कि अत्यधिक काम के घंटे, नौकरी की असुरक्षा, छंटनी, कम स्वायत्तता, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और काम से घर तक फैलती मांगे कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही ये नीतियां कंपनियों के लिए भी लाभकारी नहीं होती, क्योंकि इनके कारण जुड़ाव घटता, पलायन बढ़ता और स्वास्थ्य संबंधी लागतें बढ़ती हैं। पुस्तक इस प्रचलित धारणा को चुनौती देती है कि कठोर दबाव और कर्मचारी कल्याण के बीच समझौता अनिवार्य है। इसके बदले फेफर मानव स्थिरता का विचार रखते हैं। यह विश्लेषण कर्मचारियों, प्रबंधकों और नीति निर्माताओं को कार्यस्थल के स्वास्थ्य प्रभावों को निजी समस्या नहीं, बल्कि संस्थागत जिम्मेदारी के रूप में देखने के लिए कहता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, विषाक्त प्रबंधन वास्तव में कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए घाटे का सौदा है। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि कई प्रबंधन पद्धतियां जीत और हार का संबंध नहीं, बल्कि दोहरा नुकसान पैदा करती हैं। सामान्य तर्क यह होता है कि लंबे घंटे, कम कर्मचारियों से अधिक काम लेना, निरंतर पुनर्गठन और खर्च में कटौती से उत्पादकता तथा लाभ बढ़ेंगे। फेफर उपलब्ध शोध और कार्यस्थल उदाहरणों के आधार पर कहते हैं कि यह गणना अधूरी है। जब काम का दबाव लगातार ऊंचा रहता है, लोगों के पास निर्णय लेने की गुंजाइश कम होती है या नौकरी जाने का भय बना रहता है, तब तनाव बढ़ता है। तनाव अनुपस्थिति, स्वास्थ्य समस्याओं, कमजोर एकाग्रता, गलतियों और कर्मचारियों के संगठन छोड़ने से जुड़ सकता है। इन परिणामों की कीमत अंततः कंपनी ही चुकाती है, भले वह लागत सीधे वेतन खाते में दिखाई न दे। इस तर्क की विशेषता यह है कि पुस्तक कर्मचारी कल्याण को केवल नैतिक अपील के रूप में पेश नहीं करती। फेफर इसे प्रबंधन की प्रभावशीलता और आर्थिक परिणामों का प्रश्न बनाते हैं। वे यह भी दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति की सहन शक्ति को संगठन की क्षमता मान लेना भ्रामक है। कुछ कर्मचारी दबाव में लंबे समय तक काम कर सकते हैं, पर इससे व्यवस्था स्वस्थ नहीं हो जाती। यदि व्यवस्था लोगों को बीमार करती है और फिर उनके उपचार, अनुपस्थिति या प्रतिस्थापन की लागत पैदा करती है, तो कथित दक्षता वास्तविक दक्षता नहीं है। इसलिए पुस्तक प्रबंधकीय निर्णयों के छिपे मानवीय और वित्तीय परिणामों को एक साथ देखने की मांग करती है। दूसरा, काम से पैदा तनाव को केवल व्यक्तिगत आदत या निजी कमजोरी मानना गलत है। फेफर कार्यस्थल तनाव की चर्चा में एक महत्वपूर्ण कारणात्मक क्रम पर ध्यान देते हैं। अक्सर कंपनियां कर्मचारियों की खराब नींद, अस्वस्थ भोजन, धूम्रपान, शराब के अत्यधिक उपयोग या मानसिक थकान को व्यक्तिगत चुनाव के रूप में देखती हैं। इसके जवाब में वे योग सत्र, ध्यान कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच या व्यवहार सुधार अभियान चलाती हैं। पुस्तक इन उपायों को पूरी तरह निरर्थक नहीं कहती, लेकिन उनका मुख्य प्रश्न यह है कि व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली परिस्थितियां बदलीं या नहीं। यदि कर्मचारी लगातार देर रात तक काम कर रहा है, छुट्टी में भी संदेशों का जवाब दे रहा है या अगले पुनर्गठन से भयभीत है, तो केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम मूल कारण तक नहीं पहुंचता। यह अंतर्नीति और प्रबंधन दोनों के लिए निर्णायक है। कर्मचारी को अधिक लचीला बनाने की कोशिश उस कार्य संरचना को अपरिवर्तित छोड़ सकती है जो तनाव पैदा कर रही है। फेफर के अनुसार बेहतर दृष्टिकोण स्वास्थ्य की संस्कृति बनाना है, जिसमें कार्यभार, समय की अपेक्षाएं, सम्मानजनक व्यवहार, नियंत्रण की भावना और पुनर्प्राप्ति के अवसर शामिल हों। इस ढांचे में कल्याण का अर्थ कार्यालय में एक अतिरिक्त सुविधा देना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम के डिजाइन की जांच करना है। पुस्तक इस तरह जिम्मेदारी को व्यक्ति से हटाकर केवल कंपनी पर नहीं डालती, बल्कि संगठनात्मक वातावरण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बीच संबंध को स्पष्ट करती है। इससे नेताओं को यह पूछना पड़ता है कि उनके लक्ष्य, प्रक्रियाएं और प्रोत्साहन अनजाने में किस प्रकार अस्वस्थ व्यवहारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा, नौकरी की असुरक्षा, छंटनी और गिग काम स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ा सकते हैं। पुस्तक कार्यस्थल की समस्या को केवल बहुत व्यस्त पेशेवरों तक सीमित नहीं रखती। फेफर आर्थिक असुरक्षा को स्वास्थ्य के एक प्रमुख निर्धारक के रूप में देखते हैं। छंटनी की आशंका, बार बार होने वाला पुनर्गठन, अस्थायी अनुबंध और कम वेतन कर्मचारियों में नियंत्रण की कमी और भविष्य की चिंता बढ़ा सकते हैं। यह चिंता सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं रहती जिनकी नौकरी चली जाती है। बचे हुए कर्मचारियों को कम लोगों में अधिक काम बांटना पड़ सकता है, टीमों पर विश्वास घट सकता है और अगली कटौती का भय बना रह सकता है। इसलिए छंटनी को सिर्फ तत्काल लागत घटाने का उपकरण मानना उसके व्यापक प्रभावों को अनदेखा करना है। गिग अर्थव्यवस्था इस चर्चा को और जटिल बनाती है। अल्पकालिक काम में लचीलापन संभव है, लेकिन आय की अनिश्चितता, भुगतान युक्त अवकाश की कमी, सीमित लाभ और कमजोर सुरक्षा भी हो सकती है। पुस्तक का व्यापक बिंदु यह है कि सुरक्षा का अभाव स्वयं तनाव का स्रोत है। जब व्यक्ति बीमार पड़ने, परिवार की जरूरतों या आय में अचानक कमी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होता, तब काम का जोखिम घर तक पहुंचता है। फेफर इसीलिए स्वास्थ्य बीमा, उचित वेतन और स्थिरता को केवल लाभ पैकेज की वस्तुएं नहीं मानते, वे इन्हें ऐसी संगठनात्मक और सामाजिक व्यवस्थाएं मानते हैं जो लोगों को निरंतर संकट की स्थिति में रहने से बचा सकती हैं। यह दृष्टि कंपनियों के साथ सरकार की भूमिका पर भी प्रश्न उठाती है। चौथा, मानव स्थिरता का अर्थ है कार्य व्यवस्था को स्वास्थ्य के अनुकूल बनाना। फेफर पर्यावरणीय स्थिरता के परिचित विचार के समानांतर मानव स्थिरता की अवधारणा रखते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में संस्थाएं यह मानने लगी हैं कि संसाधनों का ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे भविष्य नष्ट हो जाए। पुस्तक पूछती है कि कर्मचारियों के साथ यही सिद्धांत क्यों नहीं लागू होता। यदि कोई संगठन लगातार लोगों की ऊर्जा, नींद, पारिवारिक समय और मानसिक स्वास्थ्य को खर्च करता है, तो वह अपने ही मानव आधार को कमजोर कर रहा है। मानव स्थिरता का अर्थ कर्मचारियों को एक उपभोज्य संसाधन के बजाय दीर्घकालिक क्षमता और गरिमा वाले मनुष्यों के रूप में देखना है। यह विचार ठोस प्रबंधन प्रश्नों में बदलता है। क्या कार्यभार उपलब्ध कर्मचारियों के अनुरूप है? क्या लोगों को अपने काम के तरीके और समय पर पर्याप्त स्वायत्तता है? क्या अवकाश वास्तव में अवकाश है या संदेशों और तात्कालिक अपेक्षाओं से भरा रहता है? क्या प्रबंधक ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे कर्मचारी सहायता मांग सके? क्या स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को कर्मचारियों पर डालने के बजाय संस्था अपनी नीतियों की लागत स्वीकार करती है? पुस्तक इन प्रश्नों को किसी एक लाभ या सुविधा से हल नहीं मानती। इसका जोर कार्य प्रणाली पर है। मानव स्थिरता का लाभ यह है कि यह चर्चा को दया या कर्मचारी सुविधा की भाषा से आगे ले जाती है। यह नेतृत्व की जवाबदेही, मापन और निर्णय प्रक्रिया का विषय बनती है। किसी संस्था की सफलता का आकलन केवल राजस्व या अल्पकालिक लाभ से नहीं, बल्कि इस बात से भी होना चाहिए कि वहां काम करने की मानवीय कीमत क्या है। अंत में कल्याण सुधार के लिए मापन, नेतृत्व और सार्वजनिक जवाबदेही की जरूरत है। पुस्तक समाधान को केवल कर्मचारी के आत्मरक्षा उपायों तक सीमित नहीं करती। फेफर का तर्क है कि संस्थाओं को उन परिणामों को मापना चाहिए जिन्हें वे गंभीरता से लेना चाहती हैं। यदि कंपनी बिक्री, लागत और ग्राहक संतुष्टि के आंकड़ों पर नजर रखती है, पर तनाव, स्वास्थ्य, पलायन, कार्यभार और अनुपस्थिति के संकेतों को नहीं समझती, तो उसके निर्णय अधूरी जानकारी पर आधारित होंगे। मापन का उद्देश्य लोगों को उनकी बीमारी के लिए दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह देखना है कि कार्यस्थल की नीतियां किस प्रकार के परिणाम पैदा कर रही हैं। नेतृत्व की भूमिका यहां निर्णायक है। वरिष्ठ अधिकारी यदि हर समय उपलब्ध रहने, लगातार यात्रा करने और निजी जीवन त्यागने को आदर्श सफलता मानेंगे, तो औपचारिक कल्याण कार्यक्रमों का प्रभाव सीमित रहेगा। इसके विपरीत उचित वेतन, बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा, वास्तविक अवकाश और अधिक सम्मानजनक कामकाजी अपेक्षाएं संकेत देती हैं कि संस्था स्वास्थ्य को प्रदर्शन के विरुद्ध नहीं मानती। पुस्तक में एटना का उदाहरण इस संभावना को रेखांकित करता है कि वेतन, लाभ और तनाव घटाने वाले उपायों का संयोजन कर्मचारियों तथा स्वास्थ्य लागतों दोनों पर सकारात्मक असर डाल सकता है। फेफर सार्वजनिक पहचान और नीति परिवर्तन की भी बात करते हैं। स्वस्थ कार्यस्थलों को सराहना मिलना और हानिकारक प्रथाओं की लागत स्पष्ट होना प्रतिस्पर्धा के मानदंड बदल सकता है। फिर भी पुस्तक यह नहीं मानती कि हर दबाव समाप्त हो जाएगा। इसका व्यावहारिक आग्रह यह है कि अनावश्यक और व्यवस्थित रूप से पैदा किए गए नुकसान को सामान्य मानना बंद किया जाए। निष्कर्ष में, डाइंग फॉर अ पेचेक उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी है जो अपने तनाव को केवल निजी असफलता समझने लगे हैं, और उन प्रबंधकों तथा मानव संसाधन पेशेवरों के लिए भी जो कल्याण कार्यक्रमों की सीमाएं समझना चाहते हैं। नीति निर्माताओं, श्रम शोधकर्ताओं और कंपनी बोर्ड के सदस्यों को इसमें नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ, काम के घंटे और छंटनी के व्यापक प्रभावों पर विचार के लिए उपयोगी ढांचा मिलेगा। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह चर्चा को अस्पष्ट खुशहाली से हटाकर कार्यभार, स्वायत्तता, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लागत और जवाबदेही जैसे ठोस मुद्दों पर ले आती है। इसी श्रेणी की कई पुस्तकें व्यक्ति को अधिक अनुशासित, शांत या उत्पादक बनने की सलाह देती हैं। फेफर की अलग पहचान यह है कि वे समस्या की जड़ को कार्यस्थल की संरचना और प्रबंधन निर्णयों में खोजते हैं। उनका तर्क है कि ध्यान, व्यायाम या लचीलापन उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन वे उस व्यवस्था का विकल्प नहीं है जो लगातार बीमारी और थकान पैदा करती है। वे कर्मचारी स्वास्थ्य को नैतिक चिंता और व्यापारिक परिणाम दोनों के रूप में जोड़ते हैं। यह संयोजन पुस्तक को केवल बर्नआउट पर टिप्पणी नहीं रहने देता, बल्कि आधुनिक रोजगार संबंधों की आलोचना बनाता है। पाठक को इसमें हर संस्था के लिए तैयार नुस्खा नहीं मिलेगा। शैली शोध, आंकड़ों और उदाहरणों पर आधारित है, इसलिए कुछ लोगों को यह सघन लग सकती है। फिर भी इसकी मुख्य चुनौती स्पष्ट और प्रासंगिक है। किसी कंपनी की सफलता को उसके लोगों के स्वास्थ्य से अलग मापना अक्सर मानवीय और आर्थिक दोनों स्तरों पर गलत निर्णय सिद्ध होता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेफरी फेफर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।